एकत्रा ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही पुराने और उलझे हुए दार्शनिक सवाल पे बात करने वाले हैं।
हाँ, मन शरीर समस्या, मतलब ये जो हमारा मन है, हमारी चेतना, सोच, जज्बात, ये हमारे इस हार्ड मास के शरीर से आखिर जुड़ा कैसे है। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये बहुत गहरा है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बातें हो रही है,
सही कहा,
तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। क्या मशीनें वाकई सोच सकती हैं? क्या वो महसूस कर सकती हैं? या फिर ये हमारी अपनी पहचान का सवाल है? हम क्या हैं? सिर्फ ये शरीर?
या फिर कुछ और भी? और मानसिक स्वास्थ्य को ही देख लीजिए, उसे समझने में भी इस रिश्ते की बड़ी भूमिका है।
तो आज हम इसी गुप्पी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। दार्शनिक जोनाथन वेस्टफॉल के विचारों के जरिए उनका काम हमें इस मुश्किल विषय को समझने में मदद कर सकता है।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सबसे पहले ये जोनाथन वेस्टफॉल हैं कौन, इनके बारे में कुछ बताइए।
जी, जोनाथन वेस्टफॉल मन के दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ माइंड, तत्वमीमांसा और विटगेंस्टीन जैसे दार्शनिकों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
अच्छा।
उन्होंने ऑक्सफोर्ड जैसी जानी मानी जगहों से पढ़ाई की है और कई अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी है, तो अकेडमिक तौर पर तो वो काफी स्थापित हैं।
लेकिन उनकी खासियत क्या है, मतलब वो इस विषय को किस नजरिए से देखते हैं?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, वो सिर्फ एक न्यूरोसाइंटिस्ट की तरह दिमाग की वायरिंग नहीं देखते या कंप्यूटर वैज्ञानिक की तरह सिर्फ कोड नहीं देखते। वो एक विश्लेषणात्मक दार्शनिक है।
विश्लेषणात्मक दार्शनिक, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में?
इसका मतलब है कि वो तर्कों की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। कोई भी सिद्धांत हो, वो उसकी तह तक जाते हैं। उसमें छिपी हुई मान्यताएं, जो अजम्पशंस होती हैं, उन्हें उजागर करते हैं। भाषा एकदम साफ हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, इस पर उनका बहुत जोर रहता है।
अच्छा, तो मतलब वो जवाब देने से ज्यादा सही सवाल पूछने में यकीन रखते हैं।
बिल्कुल, उनका मकसद ये नहीं कि वो हमें बता दें कि ये सही जवाब है, बल्कि वो हमें सोचने के औजार देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम खुद इन मुश्किल सवालों पर क्रिटिकली सोच सकें।
और ये भी दिलचस्प है कि वो सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं रहते ना, आपने कहा मनोविज्ञान, तंत्र का विज्ञान।
जी हाँ, वो इन सबको साथ लाते हैं, लेकिन एक गाइड की तरह। वो दिखाते हैं कि देखो, ये रास्ता है, इसमें ये अच्छी बातें हैं, पर ये मुश्किलें भी हैं। वो किसी एक पक्ष का झंडा लेकर नहीं चलते।
ये तो काफी संतुलित नजरिया लगता है। तो फिर उनके काम का, उनके विचारों का मुख्य सार क्या है? वो कहना क्या चाहते हैं इस मन शरीर समस्या के बारे में?
संक्षेप में कहें तो वेस्टफॉल हमें ये दिखाते हैं कि ये समस्या आखिर इतनी कठिन क्यों है, क्यों सदियों से इस पर बहस चल रही है और कोई एक जवाब सबको मंजूर नहीं।
अच्छा।
हाँ, उनका तर्क है कि जितने भी बड़े समाधान अब तक दिए गए हैं, चाहे वो पुराने जमाने का द्वैतवाद हो जहां मन और शरीर को बिल्कुल अलग माना गया,
हाँ, डिकार्ट वाला,
या फिर आज का भौतिकवाद जो कहता है कि सब कुछ बस दिमाग की मशीनरी है, कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता। सब में कुछ न कुछ गंभीर कमियां हैं, कुछ बड़े सवाल अनसुलझे रह जाते हैं।
तो वो कौन सा सवाल है जो बार बार उठता है?
वही मूल सवाल कि हमारा ये जो निजी अंदरूनी मानसिक अनुभव है, जैसे मुझे जो दर्द महसूस हो रहा है, या आपको जो ये रंग दिख रहा है, या किसी से प्यार का जो एहसास है, ये सब हमारे बाहरी भौतिक शरीर से, मतलब दिमागी कोशिकाओं की हरकत से कैसे पैदा होता है? वो कनेक्शन क्या है? वो चिंगारी कहाँ से आती है जो दिमागी गतिविधि को एहसास में बदल देती है?
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या वेस्टफॉल कोई अपना समाधान सुझाते हैं या कोई नया रास्ता दिखाते हैं?
वो सीधे सीधे कोई एक नया सिद्धांत नहीं देते, बल्कि वो इशारा करते हैं कि शायद हमें अपने सोचने के पुराने ढांचों से बाहर निकलना होगा। ये जो मन बनाम शरीर वाली बहस है, शायद ये रास्ता ही गलत हो।
मतलब
हो सकता है कि मन और शरीर दो अलग चीजें न होकर एक ही ज्यादा जटिल सच्चाई के दो अलग अलग पहलू हों। दोनों ही वास्तविक, दोनों ही जरूरी। शायद हमें एक ज्यादा, क्या कहते हैं, बहुलवादी नजरिया अपनाने की जरूरत है।
दिलचस्प। तो चलिए अब उन मुख्य सिद्धांतों और उनकी समस्याओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं जिनकी वेस्टफॉल पड़ताल करते हैं। शुरुआत डेकार्ट से करते हैं, जिन्होंने इस बहस को एक तरह से आधुनिक रूप दिया।
हाँ, रेने डेकार्ट। उनका सिद्धांत था पदार्थ द्वैतवाद। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह की बुनियादी चीजें हैं, एक सोचने वाली चीज यानी मन या आत्मा, इसका कोई वजन नहीं, कोई आकार नहीं, ये जगह नहीं घेरती।
ठीक।
और दूसरी है विस्तार वाली चीज यानी हमारा शरीर और बाकी सारी भौतिक दुनिया, ये जगह घेरती है लेकिन सोच नहीं सकती।
ये सुनने में तो काफी सहज लगता है। हमें अक्सर ऐसा ही महसूस होता है कि हमारा मैं, हमारी चेतना इस शरीर से कुछ अलग है ना?
बिल्कुल। डेकार्त ने इसके लिए तर्क भी दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे शक कर सकता हूँ कि मेरा शरीर है या नहीं। हो सकता है मैं सपना देख रहा हूँ, पर मैं इस बात पे शक नहीं कर सकता कि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि शक करना भी तो सोचना ही है।
हाँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
वही तो उन्होंने नतीजा निकाला कि चूंकि मैं अपने सोचने पर शक नहीं कर सकता पर शरीर पर कर सकता हूँ, इसलिए मैं यानी मेरा मन और मेरा शरीर एक ही चीज नहीं हो सकते, दो अलग सत्ताएं हैं।
लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, जिसकी तरफ वेस्टफॉल भी इशारा करते हैं, वो अंतःक्रिया वाली समस्या।
सही पकड़ा, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरैक्शन। अगर मन भौतिक नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है, तो वो इस भौतिक शरीर को हुक्म कैसे देता है? मेरा ये सोचने का फैसला कि हाथ उठाओ, मेरे हाथ की मांसपेशियों तक कैसे पहुंचता है? और उल्टी तरफ से भी, अगर मेरे पैर में सुई चुभती है, जो एक भौतिक घटना है, तो मेरे उस अभौतिक मन में दर्द का एहसास कैसे पैदा होता है?
ये कनेक्शन कैसे बनता है?
हाँ, ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि भूत मशीन चला रहा है, पर कैसे? कौन सा बटन दबा रहा है भूत?
बिल्कुल।
डेकार्त ने पीनियल ग्रंथि जैसी कुछ बातें कही, पर वो किसी को जमा नहीं, ये गुत्थी सुलझी नहीं। और इसी वजह से ज्यादातर दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने द्वैतवाद को छोड़ दिया और दूसरे रास्तों की तरफ देखा, खासकर भौतिकवाद की तरफ।
तो भौतिकवाद क्या कहता है, इसका मूल विचार क्या है?
भौतिकवाद, या जिसे फिजिकलिज्म भी कहते हैं, उसका मूल विचार सीधा है, सब कुछ भौतिक है, एवरीथिंग इज फिजिकल, कोई अलग से रहस्यमयी मन वाली चीज नहीं होती।
अच्छा।
जो कुछ भी है वो पदार्थ और ऊर्जा है और उनके नियम, हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी सोच, ये सब दिमागी प्रक्रियाओं का यानी न्यूरॉन्स की फायरिंग, केमिकल्स के लेन देन का ही नतीजा है। इसे विज्ञान की भाषा में समझाया जा सकता है या समझाया जाना चाहिए।
ये सुनने में ज्यादा वैज्ञानिक लगता है आज के हिसाब से, पर क्या ये वाकई मन की पूरी कहानी बता पाता है? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है?
दिक्कतें तो इसमें भी है। भौतिकवाद के अंदर भी कई अलग अलग विचार आए और हर एक की अपनी समस्याएं रहीं। जैसे शुरुआत में एक विचार आया व्यवहारवाद।
व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म।
हाँ, उसने कहा कि ये जो अंदरूनी एहसास वाली बातें हैं, ये सब बकवास हैं। मानसिक अवस्थाएं सिर्फ हमारा बाहरी व्यवहार है, जैसे दर्द का मतलब सिर्फ करहना या चोट वाली जगह से हटना है, अंदर क्या महसूस हो रहा है वो मायने नहीं रखता या शायद होता ही नहीं।
अरे, ये तो हमारे अनुभव के बिल्कुल खिलाफ जाता है। मतलब मैं दर्द महसूस करता हूँ भले ही मैं बाहर से दिखाऊं या नहीं।
बिल्कुल, इसीलिए व्यवहारवाद ज्यादा चला नहीं। फिर एक और थ्योरी आई, मन मस्तिष्क पहचान सिद्धांत,
माइंड ब्रेन आइडेंटिटी थ्योरी।
जी, इसने कहा कि मानसिक अवस्थाएं दिमागी अवस्थाओं के बराबर हैं, लिटरली आइडेंटिकल। जैसे पानी H2O के बराबर है, वैसे ही दर्द दिमाग में सी फाइबर्स के चलने फायरिंग के बराबर है।
अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा ठीक लगा, कम से कम अंदरूनी अवस्था की बात तो कर रहा है।
हाँ, ये वैज्ञानिक तौर पर आकर्षक था, लगा कि हमने मन को दिमाग में लोकेट कर लिया। पर इस पर भी एक बड़ी आपत्ति आई, जिसे कहते हैं एकाधिक साकार्यता, मल्टीपल रियलाइजेबिलिटी।
एकाधिक साकार्यता, ये क्या है?
सोचिए, क्या ये जरूरी है कि दर्द महसूस करने के लिए आपके दिमाग में सी फाइबर ही हो? क्या कोई एलियन जिसका दिमाग सिलिकॉन से बना हो या कोई बहुत एडवांस्ड AI दर्द महसूस नहीं कर सकता?
क्यों नहीं, शायद कर सकता हो।
अगर वो कर सकता है, तो फिर दर्द सिर्फ सी फाइबर फायरिंग के बराबर कैसे हुआ? इसका मतलब एक ही मानसिक अवस्था जैसे दर्द अलग अलग तरह के भौतिक सिस्टम में साकार हो सकती है। ये सिद्धांत तो सिर्फ इंसानों या हमारे जैसे जीवों पर ही लागू होता लगता है, ये काफी संकीर्ण है।
हाँ, ये बात तो है। तो फिर इसका क्या हल निकला?
इसका हल निकालने की कोशिश की एक और थ्योरी ने, जो काफी प्रभावशाली रही है, प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म।
फंक्शनलिज्म, ये क्या कहता है?
ये कहता है कि मानसिक अवस्थाएं इस बात से तय नहीं होती कि वो बनी किस चीज से है, न्यूरॉन से या सिलिकॉन चिप से, बल्कि वो इस बात से तय होती है कि वो करती क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका कारण और प्रभाव क्या है।
उदाहरण दे सकते हैं?
हाँ, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किस हार्डवेयर पर चल रहा है ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि वो काम क्या कर रहा है। आप एक ही प्रोग्राम अलग अलग कंप्यूटर पर चला सकते हैं। वैसे ही मन एक तरह का सॉफ्टवेयर है और दिमाग हार्डवेयर।
अच्छा, तो ये एकाधिक साकार्यता वाली समस्या हल हो गई। एलियन या एआई भी दर्द महसूस कर सकते हैं अगर उनके अंदर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो वही कार्य कर रही है जो हमारे दिमाग में दर्द के वक्त होता है।
हाँ, सुनने में ये काफी सुलझा हुआ लगता है। इसने एआई रिसर्च को भी काफी प्रभावित किया। लगा कि अगर हम दिमाग के फंक्शन को समझ लें और उसे मशीन में दोहरा दें तो हम सचेत मशीन बना सकते हैं।
लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ भी कोई लेकिन है। वेस्पालिया यहाँ भी कोई समस्या देखते होंगे।
बिल्कुल, प्रकार्यवाद की भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब बात आती है उस अंदरूनी एहसास की जिसे दार्शनिक क्वालिया कहते हैं।
क्वालिया? ये क्या शब्द है?
क्वालिया मतलब अनुभव का वो व्यक्तिपरक गुणात्मक पहलू, जैसे लाल रंग का लालपन, चॉकलेट का मीठापन, दर्द का चुभन वाला एहसास। ये वो चीज है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, ये बस महसूस होता है।
अच्छा, वो अंदरूनी फील।
हाँ, अब प्रकार्यवाद कहता है कि अगर कोई सिस्टम सही फंक्शन कर रहा है तो उसके पास वो मानसिक अवस्था है, पर क्या फंक्शन करना ही महसूस करना है? यहीं पर जॉन सर्ल का वो मशहूर चीनी कक्ष तर्क आता है।
हाँ, चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट।
हाँ,
मैंने सुना है इसके बारे में।
आप समझाएंगे उसे संक्षेप में?
हाँ, मतलब कल्पना करें कि मैं एक कमरे में बंद हूँ, मुझे चीनी भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मेरे पास एक बड़ी सी रूल बुक है। बाहर से कोई चीनी में सवाल लिखकर भेजता है, मैं रूल बुक देखकर उन चिन्हों के हिसाब से दूसरे चीनी चिन्ह लिखकर बाहर भेज देता हूँ।
सही।
बाहर वाले को लगेगा कि मुझे चीनी आती है, पर असल में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बस नियमों के हिसाब से सिंबल बदल रहा हूँ।
तो सर्ल कहते हैं कि कंप्यूटर भी ऐसे ही हैं। वो बहुत जटिल काम कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ समझ आ रहा है या वो कुछ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रकार्यवाद ये नहीं समझा पाता कि सिर्फ फंक्शन करने से वो अंदरूनी एहसास, वो क्वालिया कैसे पैदा होता है। और यहीं हम पहुंचते हैं उस सबसे मुश्किल सवाल पर जिसे डेविड चार्मर्स ने कहा है चेतना की कठिन समस्या, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस।
कठिन समस्या? तो क्या आसान समस्याएं भी हैं?
हाँ, चार्मर्स कहते हैं कि आसान समस्याएं वो हैं जिन्हें विज्ञान शायद धीरे धीरे हल कर लेगा, जैसे दिमाग जानकारी कैसे प्रोसेस करता है, ध्यान कैसे काम करता है, हम चीजों को पहचानते कैसे हैं। ये सब दिमाग के फंक्शन से जुड़े सवाल हैं।
ठीक।
लेकिन कठिन समस्या ये है, ये सारी प्रोसेसिंग, ये सारी दिमागी मशीनरी आखिर व्यक्तिपरक अनुभव क्यों और कैसे पैदा करती हैं? जब मेरे रेटिना पर रोशनी पड़ती है और दिमाग में सिग्नल्स जाते हैं तो ये सब सिर्फ प्रोसेसिंग होकर क्यों नहीं रह जाता? इसके साथ लाल रंग का वो निजी अंदरूनी एहसास क्यों जुड़ा होता है? ये महसूस होना कहाँ से आता है?
ये सच में कठिन लगता है। क्या इसका कोई जवाब है?
वेस्टफाल के विश्लेषण का निचोड़ यही है कि मौजूदा सिद्धांतों, खासकर भौतिकवादी सिद्धांतों के पास इस कठिन समस्या का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। ये कॉलिया का रहस्य वो चट्टान है जिससे सब आकर टकरा जाते हैं।
तो वो क्या सुझाते हैं? हार मान ले?
नहीं, हार मानने की बात नहीं है, पर वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें शायद सोचने के बिल्कुल नए तरीकों की जरूरत है। ये जो द्वैतवाद बनाम भौतिकवाद का पुराना ढांचा है, शायद ये नाकाफी है। हमें मन और शरीर दोनों की हकीकत को स्वीकार करते हुए शायद एक ज्यादा जटिल और एकीकृत समझ बनानी होगी।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो वेस्टफाल के काम से कुछ मुख्य संदेश या थीम क्या निकलते हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी संदेश है कि चेतना की ये कठिन समस्या, ये कौलिया वाली पहेली अभी भी बनी हुई है। हम दिमाग के बारे में कितना भी जान लें, ये सवाल जस का तस है कि ये सब महसूस क्यों होता है। ये सिर्फ जानकारी की प्रोसेसिंग से कहीं ज्यादा है।
हाँ, जैसे हम किसी गाने की सारी तकनीकी बातें जान सकते हैं, नोट्स, रिदम, इंस्ट्रूमेंट्स, पर वो उस गाने को सुनकर जो एहसास होता है उसे नहीं समझाता।
बिल्कुल। दूसरा अहम संदेश है न्यूनीकरणवाद की सीमाओं को समझना, यानी ये सोचना कि मन सिर्फ दिमाग की कोशिकाओं का खेल है या सिर्फ व्यवहार है, ये शायद चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना है। कुछ जरूरी चीज छूट रही है।
जैसे किसी इंसान को सिर्फ उसके शरीर के अंगों का जोड़ समझ लेना, इंसान उससे कहीं ज्यादा होता है।
सही। तीसरा, देकार्थ का असर आज भी है। भले ही हम उनके द्वैतवाद को न माने, पर उन्होंने मन अंदरूनी निजी और शरीर बाहरी सार्वजनिक के बीच जो खाई खोदी थी, हम आज भी उसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं। ये विभाजन हमारे सोचने पर हावी है।
चौथा, वो पहले व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति के नजरिए का तनाव।
Okay.
विज्ञान बाहर से देखता है, तीसरा व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होकर, पर मन का अनुभव तो अंदर से होता है। पहला व्यक्ति व्यक्ति परख, मेरा दर्द मेरा है, डॉक्टर उसे सिर्फ मेरे बताने से जान सकता है, सीधे महसूस नहीं कर सकता। क्या ये दूरी कभी मिटेगी?
ये बड़ा सवाल है। और पांचवा संदेश, जो शायद सबसे अहम है आज के लिए, वो है वैचारिक विनम्रता की जरूरत। वेस्टफाल हमें दिखाते हैं कि हमारे पास कोई आसान जवाब नहीं है। हमें मानना होगा कि हम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। शायद हमें नए कॉन्सेप्ट्स, नए फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे।
ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या वेस्टफाल के काम से कुछ ऐसी यादगार पंक्तियां या विचार हैं जो इन मुद्दों को और साफ करते हों?
हाँ, सीधे उद्धरण तो शायद ना हो, पर उनके मुख्य विचारों को हम समझ सकते हैं। जैसे द्वैतवाद की आलोचना में वो एक तरह से कहते हैं, ये सोचना कि एक बिना शरीर वाला मन शरीर को चला रहा है, ये पूछने जैसा है कि एक भूत मशीन का लीवर कैसे खींच सकता है। मतलब कनेक्शन का तरीका बताए बिना ये थ्योरी बेकार है।
हाँ, ये अंतःक्रिया की समस्या को बिल्कुल साफ कर देता है।
फिर जब वो मन मस्तिष्क पहचान सिद्धांत दर्द इज इक्वल टू सी फाइबर फायरिंग को खारिज करते हैं, तो उनका तर्क कुछ ऐसा है। ये कहना वैसा ही है जैसे कहें कि चूहेदानी का मतलब सिर्फ लकड़ी और स्प्रिंग वाला डिजाइन ही हो सकता है। ये इस बात को नजरअंदाज करता है कि चूहा पकड़ने का काम कोई बिल्कुल अलग चीज भी कर सकती है। मानसिक अवस्थाएं अलग अलग हार्डवेयर पर चल सकती हैं।
ये वो एकाधिक साकार्यता वाला तर्क है।
बिल्कुल।
और प्रकार्यवाद पर चीनी कक्ष का तर्क हमें याद दिलाता है, कोई कंप्यूटर शायद चीनी में सवालों के सही जवाब दे दे, पर क्या सिर्फ नियमों से सिंबल बदलना समझने या महसूस करने जैसा है? फंक्शन करना और अनुभव करना, ये दो अलग बातें हो सकती हैं। और आखिर में कठिन समस्या पर उनका जोर इस सवाल में सिमट जाता है, विज्ञान शायद ये समझा देगा कि दिमाग लाल रंग को कैसे प्रोसेस करता है और हमें लाल कहने पर मजबूर करता है। ये आसान समस्या है, पर मुश्किल ये है कि ये सब प्रोसेसिंग लाल रंग के उस निजी अंदरूनी एहसास के साथ क्यों आती है, कुछ भी महसूस क्यों होता है। ये वाकई केंद्रीय रहस्य है। अच्छा, अब ये सब दार्शनिक बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं? इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है?
अरे बहुत है। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही देखिए। जब हम सोचते हैं कि क्या हम सच में सचेत मशीन बना सकते हैं, तो वेस्टफाल के विचार हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ होशियार होना या सही काम करना ही काफी नहीं है। वो अंदरूनी अनुभव वाली बात ज्यादा पेचीदा है।
हाँ, मतलब AI कितना भी स्मार्ट हो जाए, जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह महसूस भी करे।
बिल्कुल। दूसरा, स्वास्थ्य और चिकित्सा में, अगर मन सिर्फ दिमाग नहीं है तो इलाज भी सिर्फ दवा से नहीं होगा। प्लेसिबो इफेक्ट या तनाव से होने वाली बीमारियां दिखाती हैं कि सोच और शरीर का गहरा नाता है। थेरेपी, काउंसलिंग, ध्यान, ये सब इसी नाते पे काम करते हैं।
सही। और कानून और नैतिकता में भी इसका असर पड़ता होगा?
हाँ बिल्कुल। जैसे हम किसी को उसके कामों के लिए कितना जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्या हमारी इच्छा स्वतंत्र है या सिर्फ दिमागी केमिस्ट्री, चेतना कब शुरू होती है कब खत्म होती है, ये सब सवाल मन शरीर की हमारी समझ से जुड़े हैं।
और शायद हमारी अपनी पहचान को समझने में भी, मैं कौन हूँ?
हाँ, क्या मैं ये शरीर हूँ जो बदलता रहता है, या मेरे विचार जो आते जाते रहते हैं, या मेरी चेतना? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं।
एक और बात, मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में शायद एक ज्यादा समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है, सिर्फ दवा या सिर्फ बातचीत नहीं।
सही कहा। जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, तीनों पहलू देखने होंगे। डिप्रेशन जैसी हालत में शायद दवा भी चाहिए, थेरेपी भी, और जीवन के अर्थ या रिश्तों पर भी काम करना पड़े।
और शिक्षा में भी शायद इसका कुछ मतलब है?
हाँ, कि सीखना सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, बच्चे का अनुभव, उसकी भावनाएं, उसकी समझ, ये सब मायने रखते हैं। शिक्षा को सिर्फ रटाना नहीं, अनुभव देना भी चाहिए।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, क्या सीखा आपने?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारा ये जो व्यक्तिपरक अनुभव है, ये दुनिया को महसूस करने का तरीका, ये एक असली चीज है। विज्ञान इसे अभी पूरी तरह समझा नहीं पाया है, पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। हमें शायद इसे समझने के लिए कई नज़रियों, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलात्मक, सबको साथ लाना होगा। और हाँ, विनम्रता रखनी होगी कि हम सब कुछ नहीं जानते।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि किसी भी आसान जवाब से सावधान रहना चाहिए। मन और शरीर का रिश्ता शायद इंसानी समझ की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जो भी कहता है कि उसने इसे पूरी तरह सुलझा लिया है, वो शायद कुछ अनदेखा कर रहा है। हमें इस जटिलता के साथ जीना सीखना होगा।
बिल्कुल, वेस्टफॉल का काम हमें यही दिखाता है कि पुराने जवाब नाकाफी हैं और नए सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए।
तो चलिए, श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं।
जरूर।
सोचिए, अगर भविष्य में कभी AI वाकई में चेतना विकसित कर लेता है, तो क्या इससे हमारे अपने मन का रहस्य सुलझ जाएगा, या फिर हमें यह एहसास होगा कि चेतना एक ऐसी चीज है जिसे बाहर से कभी पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता, चाहे वो इंसान की हो या मशीन की। सोचने के लिए अच्छा सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।